शांति। वाणी चल रही थी 18 अगस्त 1968, तीसरे पेज के आज में बात चल रही थी, ये ज्ञान की समझने की बातें हैं। ऐसे तो शास्त्रों में भी ऐसे ऐसी बातें लिख दी हैं, जो पढ़ते पढ़ते शिव बाबा के साथ ट्रेटर बन गए हैं। पूरे नास्तिक बन गए हैं। कितनी निंदा कराई दी है। तुम बच्चों को भी कब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बातें सुननी नहीं चाहिए। बाप से पूछो, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं, ये बात क्या सत्य है? तो बाप बताए देंगे, समझाए देंगे, नहीं तो बहुत झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। झूठी झूठी बातें सुना करके औरों की दिल ही खराब कर देते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा है, ऐसे बोल करके बुद्धि खराब कर देंगे। शास्त्रों में भी व्यास की झूठी झूठी बातें सुनकर मनुष्य खाक हो पड़े हैं। बाबा जानते हैं कि ऐसे तो दुनिया में बहुत होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुना करके दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुन करके अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो, फलानी ने तुमसे मेरे लिए ऐसे ऐसे कहा है, सफाई हो जानी चाहिए, नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर भी दुश्मनी रख लेते हैं। अभी बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों का विश्वास नहीं रहता है। शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। ऐसी ऊंचे ऊंचे हस्तियों को भी भूल जाते हैं। ऐसी दुर्दशा तो नहीं कर लेनी चाहिए। दुर्दशा तो पहले से ही हुई पड़ी है। ऐसे फिर जाकर के वहां क्या बनेंगे? एक दो की बातें सुनकर के नुकसान करना, ये तो ट्रेटर का ही काम है। ट्रेटर का ये धंधा है, जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो तो सदैव सर्विस में ही लगे रहेंगे। बाबा के पास सर्विसेबल बच्चों के समाचार तो आते हैं ना, दूतियां ऐसे ऐसे खराब काम करती हैं, झूठी बातें सुना करके औरों की भी दिल खराब कर देती है। बाप तो आए ही हैं सबको ऊंचा बनाने के लिए, तो प्यार से बच्चों को उठाते रहते हैं, बच्चों को ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। बाबा से पूछेंगे तो जवाब ठीक ही मिलेगा। अगर निश्चय ही नहीं होगा, पूछेंगे ही नहीं, तो फिर जवाब कैसे मिलेगा? बाप जो समझाते हैं उन बातों को धारण करना चाहिए, क्योंकि विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त तुम बच्चे बने हो। वो भी पर श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करते हो, दुनिया में और कोई कीमत तो ऊंचते ऊंचे है ही नहीं। ऊंचते ऊंच भगवान की ही ऊंचते ऊंच मत है। मर्तबा भी कितना ऊंचा है, बाप तो ऊंचते ऊंच बनाते हैं। कहते हैं कि अपना ही कल्याण करके ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पावेंगे? ये तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बच्चे जानते हैं कि दास दासियां भी तो नंबर वारी होंगी ना, और बाप तो ऊंच बनाने के लिए ही आए हैं। परंतु फिर भी पढ़ते नहीं है तो क्या पद पावेंगे? प्रजा में भी ऊंच नीच पद तो होते हैं ना। ये बुद्धि से समझना है। इसलिए समझाया है कि 16,000 जो राज परिवार में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें ऐसे बहुत हैं जिनसे भी ऊंचे पद प्रजावर्ग के फर्स्ट क्लास साहूकार पा लेते हैं। साहूकारों में भी कोई फर्स्ट क्लास साहूकार होते हैं, राजाओं महाराजाओं को भी सहयोग कर देते हैं। इतना तो ऊंच मर्तबा होता है। कोई फिर थर्ड क्लास साहूकार होते हैं, तो फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। ये सब बुद्धि से समझना है। एकदम भैंस बुद्धि नहीं बनना चाहिए। ऐसे तो इस समय सारी दुनिया ही भैंस बुद्धि है। इनको कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि हम कहां जाते हैं, ऊपर जाते हैं व नीचे उतरते जाते हैं। भैंस बुद्धियों को तो कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाप आकर के समझाते हैं, अंधो तुम तो नीचे ही उतरते जाते हो, फिर भी देखो घमंड कितना है। भैंस बुद्धि अर्थात जिनावर, जंगली जिनावर भी होते हैं ना, ऐसे ऐसे जंगली जानवर होते हैं मनुष्यों का भी मांस खा लेते हैं। आगे तो काली पर मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते थे, समझते थे कि जितना ही छोटे बच्चे की बलि होगी उतनी ही स्वादिष्ट होगी। यहां ज्ञान में छोटे बच्चे कौन हुए है? जो नए नए ज्ञान में आते हैं सात्विक स्टेज में होते हैं। ज्ञान भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान चार अवस्थाओं से गुजरता है। तो भक्ति मार्ग में भी ये मान्यता चलती है कि जितने छोटे बच्चे की बलि देंगे उतनी ज्यादा स्वादिष्ट होगी। छोटे बकरे का भी मांस नरम होता है ना, आगे जब महात्मा बुद्ध आए थे उन्होंने आकर के जब अहिंसा का पाठ पढ़ाया था उससे पहले तो छोटे बच्चों की ही बलि चढ़ाते थे। और वो ही फिर महाप्रसाद समझ करके बांटते थे। ऐसे ये आदमखोर मनुष्य ठहरे ना, तो बाप बैठ समझाते हैं कि तुम तो आदमखोर बन गए हो। कैसे? कोई की सेवा की, ज्ञान सुनाया, फिर ज्ञान सुना करके उनको अपना बना लिया। भगवान का वारसदार, भगवान का बच्चा, भगवान का भक्त तो नहीं बनाया, अपना भक्त बना लिया। तो किसने खाया? भगवान ने खाया, भगवान के ऊपर चढ़ा। बाप कहते हैं कि आदमखोर न बनो, ये तो बाद में अंग्रेज सरकार ने आकर के बंद करवा दिया। बाप कहते हैं कहां पर तो तुम वो गोल्डन एज में ऊंचे थे, ऊंचे थे, कहां अब आयरन एज में आकर के नीच से नीचे बन पड़े। मनुष्य बैठ मनुष्यों को ही खा जाते हैं। आयरन एज में कुछ पता ही नहीं चलता है। ये भक्ति मार्ग की बातें बैठ बात से समझें, तब ही समझें कि ज्ञान किसको कहा जाता है। नहीं समझते हैं तो 100% भैंस बुद्धि है। ज्ञान तो भगवान का दिया हुआ है या हमारा ज्ञान है? भगवान का दिया हुआ ज्ञान अपने स्वार्थ के लिए यूज कर लिया, अपना पिट्ठू बना लिया, तो भगवान के ऊपर अर्पण होगा या हमारी बातों के ऊपर अर्पण होगा? इतना समझाते हैं फिर भी एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों को भी क्रिमिनलाइज बन जाती है। ज्ञान सुनाकर बनाना है सिविलाइज। परंतु क्या बनाए देते हैं? क्रिमिनलाइज बनाए देते हैं। नफा नुकसान बाप की इज्जत की परवाह थोड़े ही रखते हैं। कोई को ज्ञान सुनाया, ज्ञान सुनाकर अपना बना लिया, आगे चल के माया की बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई तो घबरा करके जिसो ज्ञान सुनाकर अपना बना लिया उसी के साथ शादी करके बैठ जाते। तो बाप का नाम बाला होगा या बदनाम होगा? कुछ भी नफा नुकसान की इज्जत नहीं रखते। मूल बात है ही क्रिमिनलाइज की। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इनको जीतने के लिए कितना माथा मारना पड़ता है। मूल बात है ही पवित्रता की। इस पवित्रता की बात पर ही शुरुआत से कितने झगड़े होते आए हैं। इस काम विकार पर जीत प्राप्त करके जगत जीत बनना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना? आगे चल के तो सब समझ ही जावेंगे। परंतु अभी जो इतना समझाने पर नहीं समझ रहे हैं तो पद तो नीचा हो जाएगा ना। बाप तो जानते हैं कि नई दुनिया की स्थापना तो हो ही जाएगी। अच्छा माता पिता बाप दादा का बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को नमस्ते। एक छोटा सा रात्रि क्लास है 18-8-68 का। बच्चों की बुद्धि में अनेक प्रकार के पॉइंट्स रहते हैं। षष्ठी के आज मध्यंत को तुम बच्चे जान गए हो, ये समझा सकते हो कि हम परमपिता परमात्मा के जीवन चरित्र या बायोग्राफी को जानते हैं। इस संबंध में कोई क्या समझावेंगे, कोई क्या समझावेंगे। कोई तो फिर नहीं समझा पाते हैं जैसे बेसिक में कितना समझाया। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परंतु जिन्होंने समझाया उन्होंने तो जान ही नहीं पाया कि एक व्यापी कहां है, तो उनको समझा हुआ कहेंगे या बेसमझ कहेंगे। फिर ऐसी एक्ट करने लग पड़ते हैं कि भगवान सर्वव्यापी का सर्वव्यापी ही रह जाता है। भले बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाते हैं, उनमें त्रिमूर्ति में फिर अपने ही चित्र छापने लग पड़ते हैं। तो सर्वव्यापी हुआ या एक व्यापी हुआ। लोग तो कहेंगे कि भगवान सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी बाप का होना ये कोई बाप की बायोग्राफी थोड़े ही हुई। बायोग्राफी जीवन कहानी में तो हर एक की जीवन कहानी में कुछ न कुछ विशेषता होती है। एक की जीवन कहानी न मिले दूसरे से। जैसे नेहरू की बायोग्राफी कोई पूछे और फिर कहे कि नेहरू सर्वव्यापी है, तो फिर बायोग्राफी तो नहीं हुई। नटसेल में भी कोई को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ऊंचे से ऊंचे भगवान है जिसको ही परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीच किस आधार पर कहा जाता है। ऊंचे से ऊंच काम करके दिखावे तो ऊंचे से ऊंच, नीचे काम करके दिखावे तो नीचे से नीच। भगवान तो इतना ऊंच काम करके दिखाता है जितना ऊंचा काम दुनिया का कोई भी धर्म पिता नहीं कर सकता, कोई भी महात्मा नहीं कर सकता, धर्मात्मा नहीं कर सकता, कोई भी पुण्यात्मा नहीं कर सकता। क्या करता है? नरक को स्वर्ग बनाए देता है, पुरानी तामसी दुनिया को, पतित दुनिया को सतो प्रधान सतयुग बनाए देता है। ये है ऊंचे ऊंचे काम। उसको फिर परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तो कोई भी आवे तो बैठ बताओ कैसे ऊंचते ऊंच बाप की बायोग्राफी को हम जानते हैं। दुनिया में तो उसको सर्वव्यापी कह देते हैं, सब में व्यापक है, तो फिर सब ऊंचे काम करके दिखावे। परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता। ऊंचते ऊंच बाप, फिर उनके बाद है लक्ष्मी नारायण, उनके भी 84 जन्मों को हम समझा सकते हैं। फिर राम सीता, उनकी भी बायोग्राफी बता सकते हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती है। राजाओं आदि की हिस्ट्री तो बहुत जानते हैं। कोई पूछे, प्रजापिता ब्रह्मा जिसको एडम कहते हैं, उनको जानते हो? तुम तो कहेंगे हम तो उनकी जीवन कहानी को बता सकते हैं। सो भी उनके एक जन्म की जीवन कहानी नहीं, इतने 84 जन्म की जीवन कहानी को बता सकते हैं। काली का भी बता सकते हैं। बताओ कि जगदम्बा और काली है एक ही? तुम तो उन सभी की बायोग्राफी को जानते हो। सभी 84 जन्म लेने वाले हैं। चौरासी लाख जन्म तो होते नहीं है। 84 लाख योनियां होती है। सतयुग आज से लेकर के कलयुग अंत तक, परंतु मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती है। हाँ, 84 लाख योनियों जैसे कर्म करती है, परंतु सूरत उन जैसी नहीं होती है। बंदर जैसी सीरत हो सकती है, परंतु सूरत तो मनुष्य की ही कहेंगे। तो बताओ कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को भी हम जानते हैं। सो भी न सिर्फ एक जन्म की, बल्कि उनके 84 जन्मों की बायोग्राफी को भी बता सकते हैं। किसकी किसकी? ब्रह्मा की, विष्णु की और शंकर की। अच्छा, फिर सवाल पैदा होता है, ब्रह्मा जिसके 84 जन्मों की कहानी बता सकते हैं, वो एक ही होता है या अनेक होते हैं? है? शास्त्रों में तो दिखाया है, चतुरानन पंचानन, पांच मुख होते हैं, चार मुख होते हैं। तो जब चार मुख होते हैं या पांच मुख होते हैं, संपन्न होने की यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है। कभी टीवी में ब्रह्मा को बोलते हुए सुना है? सुना है? नहीं सुना? चार मुख वाले ब्रह्मा को बोलते हुए नहीं सुना? हा? सुना ना, एक जैसी बात बोलते हैं या चारों पांचों मुख अलग अलग बातें बोलते हैं? एक ही जैसी आवाज है और एक ही बातें बोलते हैं। ये संपन्न स्टेज की यादगार है या अधूरी स्टेज की यादगार है? जब उनका संपन्न स्टेज का पुरुषार्थ संपन्न होता है तो एक ही आवाज बोलते हैं। ब्रह्मा सो क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। विष्णु को भी चार भुजाएं दिखाते हैं, सर एक दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट नुधा हुआ है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। हाँ, जब संपन्न स्टेज होती है तो एक भाषा बोलते हैं, उनकी वाचा में भी क्रॉस नहीं हो सकता। विष्णु की बायोग्राफी हम जानते हैं, कोई एक आत्मा तो विष्णु नहीं है, कितनी आत्माओं का संघात मिलकर के विष्णु दिखाया गया है। चार नहीं, चार तो भुजाएं हैं। भुजाएं जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है, नंबरवार या चैतन्य बुद्धि होती है। भुजाएं चलने वाली है या चलाने वाली है? भुजाएं तो चलने वाली है, जरूर उनको चलाने वाला कोई एक है, जो ऊंचे के ऊंच भगवान है। इसलिए शास्त्रों में कह दिया है विष्णु भगवान, शंकर भगवान। दाढ़ी मूंछ वाले ब्रह्मा को भगवान नहीं कहते। तो तुम तीनों देवताओं की बायोग्राफी को बता सकते हो। उनमें भी जो विष्णु के पात्रधारी नंबरवार हैं, या ब्रह्मा के रूप में जो मुख दिखाए गए हैं वो नंबरवार हैं, उनमें कोई फर्स्ट क्लास भी होंगे या नहीं होंगे? है? जो फर्स्ट नंबर है वो अर्जुन कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा अव्वल नंबर। विष्णु में भी जो चारों भुजाओं को चलाने वाला है वो अव्वल नंबर। तो उनकी बायोग्राफी को भी हम जानते हैं। मुख्य है भारत की बात, क्या बायोग्राफी बताने में भी मुख्य कौन है? और देशवासी मुख्य नहीं है, भारत मुख्य है। क्यों
है? भारत में भगवान,
क्योंकि चार ब्रह्मा में भगवान का मुकर्रर रूप साबित नहीं होता। विष्णु के जो चार प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माएं हैं, उन सब में भगवान लक्षित नहीं होता। भगवान किस में प्रत्यक्ष होता है? मुकर्रर रूप से सिर्फ एक ही है। जो ज्ञान के आधार पर मनुष्यों को समझाया जा सकता है कि ये मुकर्रर रथ है, औरों को ज्ञान के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। कोई कितना भी बोल क्या रहे, मैं भगवान हूं, मेरे अंदर भगवान आता है, परंतु वह बात साबित नहीं हो सकती। नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि और जो आत्माएं हैं विष्णु के रूप में पार्टधारी हो, ब्रह्मा के रूप में पार्टधारी हो, अलग अलग रूप तो दिखाई है ना, वो सदैव भारतात रोशनी ज्ञान की रोशनी में रत नहीं रहते हैं। रत रहना माना लगे रहना। वो सिर्फ एक ही आत्मा है जो आदि से लेकर के अंत तक ज्ञान की रोशनी में संलग्न रहती है। इसलिए बाप भगवान भारत में ही आते हैं। बाप का प्रत्यक्ष रूप क्या है? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? बिंदी आत्माएं भी अप्रत्यक्ष है और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी अप्रत्यक्ष है। वो अप्रत्यक्ष बाप जब अपना धाम ऊंचते ऊंचे छोड़कर आता है, जो परे से परे धाम परम धाम कहा जाता है, तो किस रूप में प्रत्यक्ष होता है? लोग कैसे समझते हैं? क्या चीज है? ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष होता है। या यूं कहें, ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप ही परमात्मा बाप है। अगर ज्ञान न सुनावे, चमत्कार दिखावे, साक्षात्कार ही साक्षात्कार आता रहे, तो भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा? ज्ञान से ही भगवान बाप की प्रत्यक्षता होती है। इसलिए ज्ञान की बड़ी भारी महिमा है। ये पहला पहला बाप का वर्षा है, अव्यक्त बाप का ये अव्यक्त वर्षा है। क्या? ज्ञान। जो जितना ज्ञान उठावेगा वो उतना बड़ा वर्षे का हकदार बनेगा। प्रैक्टिकल में बड़े से बड़े वर्षे का हकदार बनेगा। वो ज्ञान स्वरूप बाप फिर किस में आवेगा? जो ज्ञान को महत्व देगा उसमें आवेगा, या जो उस बाप की प्रॉपर्टी बाप के उस रूप को महत्व ही नहीं देगा उसमें आवेगा। तो भारत ही है जिसमें बाप आते हैं। भारत में ही आकर के रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का राज बताते हैं। और धर्म कैसे आते हैं वो भी बाप समझा सकते हैं। कैसे आते हैं? है और धर्मों की जो मुख्य आत्माएं हैं उन धर्मों के जो बीज बाप हैं उनमें क्यों नहीं आते हैं? सतो प्रधान बनना न बनना ये भी तो ज्ञान की ग्रहण करने की शक्ति के ऊपर आधारित है ना। बाप जो नॉलेज देते हैं उस नॉलेज को बिना कुछ भी मिक्स किए अपनी मनमत या मनुष्य मत मिक्स किए बगैर ज्यों का त्यों उठाना ये सब के बस की बात नहीं है। एक व्यक्ति की सुनी हुई बात दूसरा व्यक्ति जब सुनावेगा तो जरूर उसमें कुछ न कुछ मिक्स कर देगा। कुमारता का दादी में ये शिफ्ट थी कि ब्रह्मा के मुख से जो भी वाणी निकलती थी घंटे डेढ़ घंटे उस वाणी को शब्द सहज ज्यों का त्यों सुना देती थी। फिर भी अंतर पड़ गया या नहीं पड़ गया? क्यों अंतर पड़ गया? क्योंकि रिपीट तो टैप रिकॉर्ड भी कर देता है। रिपीट करना कोई नॉलेज नहीं है। जो भी भगवान बाप नॉलेज सुनाते हैं उस नॉलेज के वाइब्रेशन को उस नॉलेज के भाव को ज्यों का त्यों पकड़ना और ज्यों का त्यों दूसरों को सुनाना समझाना ये एक जैसा सबका नहीं हो सकता। तो और धर्म पिताएं भी ज्ञान ग्रहण करते हैं। वो स्वयं ज्ञानी होते हैं या भगवान का ही ज्ञान ग्रहण करते हैं? क्या होता है? भगवान जब संगम युग में आता है तो भगवान का ही ज्ञान और धर्म पिताएं भी ग्रहण करते हैं। आदम एडम या प्रजापिता भी ग्रहण करता है। फिर अंतर क्या पड़ जाता है? है? अंतर पड़ता है जो और धर्म पिताएं हैं वो अपन को आत्मा समझने की उतनी प्रैक्टिस नहीं करते। आत्मिक स्थिति में रह करके भगवान बाप के ज्ञान को नहीं सुनते। कुछ न कुछ देह का अहंकार रह जाता है। इसलिए बाप बार बार दोहराते हैं, क्या कहते हैं, अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। नहीं तो वर्षे में बहुत अंतर पड़ जाएगा। तो और धर्म पिताएं कैसे आते हैं? एक साथ आते हैं क्या? नंबर वार एक के बाद एक क्यों आते हैं? दुनिया ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में उतरती रहती है, सतो प्रधान से तमो प्रधान स्टेज में उतरती रहती है। फिर उनका टाइम कैसे नूद हो जाता है आने का? हम ब्राह्मण भी पुरुषार्थ करते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान युक्त धारणा करते हैं जीवन में, ज्ञान युक्त होकर के चलते हैं, श्रीमत के अनुकूल अपना जीवन बनाते हैं, तो हमें कौन से युग में विशेष प्राप्ति होती है?
संगमयुगी
स्वर्णिम युग से लेकर के सतयुग और त्रेता तक हमको अनवरत और प्राप्ति होती रहती है, और उसके आधार पर 63 जन्म भी प्राप्ति होती है। और जो धर्म पिताएं हैं वो आत्मिक स्टेज की उस स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर पाते। जो ज्ञान का ईश्वरीय ज्ञान का मूल फाउंडेशन है, वो धर्म पिताएं अभी ज्ञान में निकले होंगे या नहीं निकले होंगे?
नहीं।
वो धर्म पिताएं जो परमधाम से डायरेक्ट द्वापर कलयुग में आते हैं, है? आप नहीं, अकेले नहीं बोली। वो धर्म पिताएं अभी ईश्वरीय ज्ञान को पकड़ा होगा या नहीं पकड़ा होगा, इस दुनिया में है या नहीं है? दुनिया में तो है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान की बातें अभी पकड़ ले ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो जितना देह अहंकारी होगा उतना ज्ञान की बातों से दूर रहेगा। अंदर एक और बाहर दूसरा, ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। है तो नंबर बार, तो वो धर्म पिताएं आगे पीछे कैसे आते हैं? धारणा के आधार पर आते हैं। त्रिमूर्ति और गोला समझाने के लिए बहुत अच्छा है। क्या समझाने के लिए है? दूसरे दूसरे धर्मों की बात अगर समझानी है तो कौन कौन से चित्रों पर अच्छी तरह समझा सकते हैं? गोले के चित्र पर और जाड़ के चित्र पर समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आधा कल्प तो है एक धर्म, बाकी आधा कल्प में अनेक धर्मों का आवर्तन होता है, इसलिए उसको कहते हैं द्वापुर, द्वैतवादीपुर। इन बातों का सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को पता नहीं है। क्रिश्चियन जो होंगे इन बातों को न जानने के कारण, भले उनको सुनाया हो तो भी विश्वास करेंगे? विश्वास ही नहीं करेंगे। वो क्राइस्ट का बाइबल ही सुनाते जाएंगे, और क्या सुनाएंगे? परंतु तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारी बातें हैं, तुम समझा सकते हो कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए हम आस्तिक हैं। हम आस्थावान किस लिए हैं? हम जिसके ऊपर आस्था रखते हैं उसकी बायोग्राफी को हम जानते हैं, इसलिए हम आस्तिक हैं। दुनिया में जो भगवान बाप को नहीं जानते हैं तो वो उसकी बायोग्राफी को भी नहीं बता सकते हैं। मोस्टली तो यही बतावेंगे भगवान सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है तो बायोग्राफी जीवन कहानी की बात खत्म हो जाती है। तो दुनिया में तो कोई नहीं जानते हैं, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो, भाषण में भी लिख सकते हो। जो ऋषि मुनि थे वो परमात्मा को और उनकी रचना के आदिमध्यंत को नहीं जानते थे। इतने बड़े बड़े विद्वान पंडिताचार्य ही नहीं जानते थे, परंतु देखो वंडर है, कि तुम बच्चे जानते हो। जो जानता होगा वो दूसरों को समझा सकता है या नहीं समझा सकता है? जो जानता होगा उसकी पहचान होगी कि वो दूसरों को भी समझा सकता है। आज से 5000 वर्ष पहले उन देवी देवताओं का राज्य था, ये बात हम समझा सकते हैं, क्योंकि देवी देवताएं जो होते हैं वो स्वर्ग में होते हैं। स्वर्ग में सुख होता है या दुख भी होता है? स्वर्ग में सुख होता है, सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता है। इसलिए स्वर्ग में कोई भी दिन नहीं गिनता, समय की काउंटिंग वहां होती है नहीं होती है। सुख में टाइम जल्दी बीत जाता है या देर में बीतता है, ये नियम है कि सुख में टाइम का पता ही नहीं चलता और दुख का टाइम एक एक दिन गिन करके टाइम की गिनती करनी पड़ती है। तो बात स्पष्ट है, जिस दुनिया में समय की गिनती करनी पड़ती है उसकी हिस्ट्री बनाई जाती है। मनुष्यों की इस द्वैतवादी दुनिया में 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिलती है। उस 2500 वर्ष में दो दो मते फैलाने वाले दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आए, और जब परिवार में ही समझो दो मते हो जाएं तो झगड़ा होगा कि नहीं? झगड़ा जरूर होता है। तो ये द्वैतवादी दुनिया द्वापर युग है, जहां से दुनिया में झगड़े फसाद मारामारी होती आई है। ये दुख की दुनिया है, जहां मनुष्यों ने एक एक दिन काउंट करके जीवन बिताया है। एक जीवन नहीं, अनेक जन्म बिताए हैं, नहीं तो पूर्व जन्म का किसी को याद नहीं रहता है। फिर भी कितने वर्ष की हिस्ट्री है मनुष्यों के पास मौजूद है? है 2500 साल की हिस्ट्री नंबरवार प्रूफ और प्रमाण के साथ मनुष्यों के पास मौजूद है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई इस बात का प्रमाण है। मेसोपोटामिया शहर की खुदाई इस बात का प्रमाण है, कि 2500 से पुरानी कोई भी चीज वहां नहीं मिली। भारत के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भगवान आज से 2500 साल पहले, वो 5000 साल पहले कौन से युग के अंत में आया था? है? द्वापर के अंत में आया था। और महाभारत युद्ध कराया था। महाभारत युद्ध कराने के बाद सुख की दुनिया आनी चाहिए या दुख की दुनिया आनी चाहिए? है? सुख की दुनिया आनी चाहिए, तो भगवान के आने का महत्व है। परंतु द्वापर के अंत में भगवान आया कृष्ण भगवान के रूप में और पापी कलयुग की स्थापना हो गई, तो पाप की दुनिया में दुख होगा या सुख होगा? दुख ही दुख होता है। तो ये शास्त्रों की थ्योरी ठहरती नहीं है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बात हो गई। इसलिए बाप कहते हैं कि ये समय की जो गणना है हिस्ट्री के अनुसार वो मनुष्यों के पास सिर्फ 2500 साल की है। 5000 वर्ष पहले की बात को जो उन्होंने गणना करके दिखाया है वो शास्त्रों की कपोल कल्पित बातें हैं, वो पुराण पंथी है, वो कोई हिस्ट्री नहीं है, उसका कोई भी प्रूफ मनुष्यों के पास नहीं है। सच्चाई ये है कि जो 2500 वर्ष की हिस्ट्री प्रूफ सहित मनुष्यों के पास मिल रही है वो दुख की दुनिया की हिस्ट्री है, और दुख और सुख, दुख होता है कुमति से। कौन सी मति से? कुमति से। और सुख होता है सुमति से। तो शास्त्रों में भी लिख दिया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति देने वाला कौन है? सो कोई को पता ही नहीं है। बुद्धिमानों की बुद्धि एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसकी बुद्धि कभी भी भ्रष्ट नहीं होती। मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आते आते देह के सुख भोगते भोगते मन बुद्धि रूपी आत्मा को नीचे गिराए देते हैं या बचे रहते हैं? नीचे ही गिराते चले जाते हैं। एक ही आत्मा ऐसी है मनुष्यों के बीच में पार्ट बजाने वाली, जो कभी भी नीचे नहीं गिरती है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है, गर्भ से जन्म नहीं लेती है। ये उसी आत्मा का कमाल है जो आकर के इस सृष्टि पर स्वर्ग स्थापन करती है। जरूर सदाकाल स्वस्थिति में रहने वाली आत्मा होगी, नहीं तो देवताएं भी स्वस्थिति में रहते हैं। परंतु क्या सदाकाल स्वस्थिति में रहते हैं? 2500 साल के बाद उनकी स्वस्थिति परिस्थिति में फंस जाती है, सदाकाल स्वस्थिति में नहीं रहते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा शिव जो तुरीय आत्मा है, सदा शिव कहा जाता है, वो सदैव ही स्वस्थिति में रहने वाला है।